Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और ये पति भी ऐसा है, पति भी समझता है कि मेरी पत्नी बेवकूफ है, भले नहीं बोलता हो लेकिन समझता है, ये कम समझती है। आप किसी की व्यक्ति को पूछना ये कैसे, और बोले ठीक है लेकिन थोड़ी समझ कम है, वो बोलेगा वो ठीक है लेकिन समझ कम है। उस ऋषि दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात बोली, आप सबसे अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, आप अपने को जितना अच्छा समझते हैं उतना दुनिया में किसी को भी अच्छा नहीं समझते। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, आप अपने आप को धार्मिक समझते हैं, इसलिए कई बार जब बहसें होती हैं ना आपस में तो आदमी बोलता है कि मोदी काम नहीं कर रहा है, तुम करोगे क्या, आदमी ऐसा बोलता है जैसे कि वो बनता तो बहुत अच्छा करता हो, क्योंकि उसके अंदर जो अहम तत्व के प्रति आकर्षण है, महत्व बुद्धि है, वो बोल रहा है। हमारे पास सबसे मूल्यवान कोई चीज है तो वो अहम 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 है। और भगवान ने भी बोला कि भैया मैं हूं, कौन मैं कान हूं, ऐसा नहीं बोला है भगवान ने, ये नहीं बोला कि दो पुतलियों के बीच में जो नेत्र की दृष्टि है वो मैं हूं, ऐसा नहीं बोला है भगवान ने। पर भगवान ने ये भी नहीं बोला कि भैया ये दो कान के जो छेद है ना उसके अंदर मैं हूं, ये भी नहीं बोला भगवान ने। ये भी नहीं बोला कि वो पैर है ना इतने महत्वपूर्ण, एक जगह से दूसरे जगह पर तुम जाते हो उन दो पैरों में मैं हूं, ये भी नहीं बोला। हाथों में मैं हूं, ये भी नहीं बोला भगवान ने। कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, मैं हृदय में हूं। और जब भी आप मैं बोलते हो ना तो आप अपना हाथ कहां ले जाते हो, मैं, आप ऐसा नहीं बोलते कि मैं, ऐसा नहीं बोलते, आप अपना हाथ घुटने की तरफ नहीं ले जाते हो, मैं ऐसा नहीं ले जाते हो, क्यों, क्योंकि मैं का जो केंद्र है ना वो यहां है हृदय में, इसलिए हमारे हृदय में जो मैं की स्फुरणा है वो भगवान है, वो भगवत तत्व है। आपको केवल इतना ही जानना है कि मेरे अंदर जो मैं है ना वो मैं भगवान है, वो ब्रह्म तत्व है, वो आत्म तत्व है, बस इतना ही जानना है। और ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, आपको मालूम मैं हूं ये तो आपको मालूम ही है, और आपको ये भी मालूम है कि शरीर से अलग वो मैं जो तत्व है वो शरीर से अलग है। आपको मैं को पाना नहीं है, मैं को केवल जानना है कि वो है। आपको केवल इतना ही जानना है कि वो है तत्वमसी, शरीर से अलग जो सच्चिदानंद घन जो आत्म तत्व है वो मैं, बस इतना ही जानना है। और ये सारा जो प्रपंच है ना अध्यात्म, वो उसको जानने के लिए, केवल उस मैं को जानने के लिए, मैं तो है ही है लेकिन उस मैं को यथा तथ्य जानना है, वो शरीर से अलग है। और ये जान लेना चाहिए, यह चे दशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः, उसको जानने का ये उपाय है, ये उपाय है जानने का उपाय है नारायण। ये आपका शरीर, शरीर नहीं होगा तो आप कैसे जानोगे, मैं शरीर से अलग हूं ये जानने के लिए भी शरीर चाहिए, मैं मन से अलग हूं ये जानने के लिए भी मन चाहिए। अच्छा आप चश्मा ढूंढने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती कि नहीं है? भाई आपको चश्मा ढूंढना है तो भी किसकी जरूरत पड़ती है, चश्मा। और चश्मा ही नहीं हो आपके आंख पर तो कहां से ढूंढोगे। ये दोनों परस्पर बहुत मजेदार बात है, पहले चश्मा लगाओ फिर चश्मा ढूंढो। आज यदि चश्मा न हो तो आपको दिखाई कहां से देगा। ऐसे आपको मन से अलग मैं हूं ये जानने के लिए भी मन चाहिए, मैं शरीर से अलग हूं ये जानने के लिए भी शरीर चाहिए, आप कैसे विचारे न ये बोधव्यम, ये वेदांत जो है ना ये विचार है, ये विवेक है और उसके द्वारा आपको जानना है, इसलिए इस तन की जरूरत है, इस शरीर के स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं, मन के स्वस्थता की जरूरत नहीं, बुद्धि के स्वस्थता की जरूरत नहीं, इसलिए श्रुति ने कहा मनसा एव इदम् आप्तव्यम, मन के द्वारा ही इसको जान लेना चाहिए। ये जब तक आपके पास तन है तभी तक आपको जान लेना चाहिए, ये तो बाद में नहीं जान पाएंगे। आपके शरीर में ऊर्जा है, आपके शरीर में शक्ति है, आप बैठ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, तभी तक आपको जान लेना चाहिए, तभी तक कर लेना चाहिए। और जब इस शरीर में शक्ति नहीं रहेगी उस समय आपको लगे कि हम बद्रीनाथ की यात्रा करें, नहीं होगी भाई। बद्रीनाथ की यात्रा करना हो तो आपके पास शरीर चाहिए ना, आपको अपने तीर्थ धामों की यात्रा करनी हो तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपको आनंद ही नहीं आएगा। ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करने के लिए इस शरीर में ऊर्जा चाहिए, बुद्धि में ऊर्जा चाहिए, मनोबल चाहिए। इसलिए श्रुति ने कहा जब तक ये तन है, जब तक आपके पास मन है, समर्थ बुद्धि है, तभी तक आपको उस तत्व को जान लेना चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षण, आज यदि आपने अवसर चूक लिया, आप अवसर को उपयोग में नहीं लाए तो क्या होगा फिर? तो बोले ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, पुनः आप इस संसार के चक्र में उलझ जाएंगे, आपका मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, स्वर्ग होगा, स्वर्ग माने जन्म होगा, तो लोक लोकांतर, लोक लोकांतर का अर्थ आप ही मत समझना कि ओ लोक लोग, ऐसा नहीं, एक शरीर से दूसरे लोक, लोक केन्ते इति लोका, एक शरीर से दूसरे शरीर में, अब वो शरीर कहीं भी हो, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, शरीर ही सबसे बड़ा लोक है। और आप फिर इस अपने कर्मों के आधार पर पशुवादी योनियों में भी जाएंगे, हो सकता है तो थोड़ा अच्छा कर्म हो तो ऊपर देवताओं की योनियों में जाएंगे, मनुष्य की योनियों में भी आएंगे। और ये जन्म मरण की श्रृंखला, ये सुखी दुखी होने की श्रृंखला ऐसे ही बनी रहेगी। एक बूंद को अपने आप को बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक छोटा सा बूंद है जल, उसको बचना है, उसको सूखने से बचना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसका एक ही उपाय है कि वो जाके समुद्र में मिले, यदि वो समुद्र में मिल जाए तो वो कभी नहीं सूखेगा। लेकिन समुद्र से अलग होकर वो बूंद सोचे कि मैं कभी सूखू नहीं, ये संभव नहीं है। उपाय हैं, यही उपाय हैं आपको बचने का। ऐसे ही आपको ऐसा लगता हो कि मेरा जन्म न हो दोबारा, और ये सबसे बड़ी जन्म की जो प्रक्रिया है शरीर के साथ जुड़ी हुई है, ये पैदा होना, मरना, मिटना, अनेकों प्रकार की उत्पीड़नाएं ये शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। एक महात्मा जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, जैसे नमक है ना, नमक, नमक एक बार समुद्र से अलग होके बना नमक, अब उस नमक की क्या क्या नहीं होती है, फजी थी, आप छोक लगा देते हो, उसको जला देते हो, उसको कूट देते हो, सब कुछ कर लेते हो, वो अलग हुआ नमक है। और वो एक बार नमक मिल गया, समुद्र में मिल गया तो समुद्र हो गया, आप उसको छोक नहीं लगा सकते आप। और ये हमको तो दिन भर छोके तो लगाए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक क्या है, छोके तो लग रहा है, कभी विषाद हुआ, कभी परेशानियां आई, बहुत सारे कष्ट, वेदनाएं, संवेदनाएं, राग, द्वेष, कामना, विकार, ये क्या है, ये इस जीव रूपी नमक को बहुत ज्यादा छोंक लगाना है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक आप अपने को नहीं जानोगे। इसलिए कहते शरीर अत्वाय कल्पते। ये पुनः पुनः देहाध्यास पैदा होता रहेगा, ऐसा मतलब आत्मज्ञान यदि नहीं होगा तो पुनः पुनः देहाध्यास पैदा होगा। आप स्वप्न में अपने आप को समझते हैं कुछ और परेशान हो जाते हैं, आप स्वप्न देखते हैं परेशान होते जाते हैं, स्वप्न में कुछ भी समझ रहे हैं, कई बार स्वप्न से भी आदमी परेशान रहता है। बहुत सारे ऐसे विचित्र स्वप्न देखता आदमी परेशान रहता है, वो स्वप्न क्या है? है तो कुछ भी नहीं लेकिन वो बहुत परेशान करता है। ऐसे ये जो शरीर है ना, ये देहाध्यास पैदा करता रहता है देहाध्यास। कई बार हम लोग सत्संग करते हैं और सत्संग करते घर में जाते जाते सत्संग भूल जाते हैं। एक कोई व्यक्ति था, उसका नाम था रामलाल। पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी थी, घर के सारे काम धंधे पत्नी किया करती थी। रामलाल केवल अपना घर में खाता पीता पड़ा रहता था। एक दिन पत्नी ने बोला कि तुम काम कुछ करते नहीं हो, तुम जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। रामलाल ने कहा कि मैं सब्जी लेने के लिए नहीं जा सकता हूं। पत्नी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा कि गया और मैं खो गया तो क्या होगा। वो बड़ा बेवकूफ था, वो डरता था, खोने से डरता था, मैं कहीं खो न जाओ खो न जाओ। पत्नी ने बहुत समझाया कि दुनिया में बहुत लोग हैं और वो बाजार में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, कभी खोते नहीं हैं और तुम भी नहीं खोगे। लेकिन रामलाल ने कहा कि नहीं, यदि मैं खोया तो क्या करूं। पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने तुरंत अपनी रिबन निकाली और उसके पैर में बांध दिया और पैर में बांध करके कहा कि तुम अब नहीं खोगे, तुम्हारे पैर में मैं रिबन बांध दी हूं। बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, अब मैं खोऊंगा नहीं। देखो उसको भरोसा अपने पर नहीं है, उस रिबन पर है। रामलाल को भरोसा अपनी बुद्धि पर भी नहीं है, उसको उस रिबन पर भरोसा है। हमारी भी ऐसी दुर्दशा है, हमारे भरोसे भी ऐसे ही हैं, इधर उधर के भरोसे हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा तो हमारे पर्स पर है कि अपने ऊपर है, हमारा भरोसा तो अकाउंट पर है, हमारा भरोसा कहीं दूसरे में पड़ा हुआ है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा तो अपने बुद्धि पर भी नहीं है, इसलिए आदमी कागज पेन रखता है, इसको इतना रुपया दिया, लिख लो भैया लिख लो, क्या पता क्या पता, बुद्धि का क्या पता। हाँ दे दिया भूल जाए, कागज पर भरोसा करो। रामलाल बड़ा खुश हो गया और वो निकल पड़ा, गया बाजार। अरे वो तो मेला था, मेला बाजार था उस दिन, हजारों लोग खरीदारी कर रहे थे इधर उधर। और उसने देखा एक जगह पर एक बाजीगर हाथ में सांप लेकर के उछाल रहा था, करतब दिखा रहा था। गोल गोल लोग घेरे में खड़े थे, हजारों लोग खड़े थे। पुराने जमाने के खेल को आपने देखा होगा गांवों में, आजकल तो वो परंपरा ही खत्म, हजारों लोग खड़े होते गोल गोल गोल, और वो सपेरा वो बीच खड़ा होके वो करतब दिखा रहा था। इसको रामलाल को बड़ा अच्छा लगा। रामलाल ने सोचा कि चलो भैया हम भी थोड़ा देख लेते क्या है क्या है। जैसे अंदर गया, भीड़ में घुसा, उसको भी बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। अचानक सपेरे ने हाथ में सांप लिया और पब्लिक को खुश करने के लिए थोड़ा यूं ऐसे उछाल दिया। लोग एक के ऊपर दूसरे गिरने लगे, उठने लगे, हंसने लगे, चिल्लाने लगे। और वैसे रामलाल भी हंसा, उठा, चिल्लाया, गाया। और जैसे बाजीगर का खेल खत्म हुआ तो सबसे पहले रामलाल ने अपने पैर की तरफ देखा, लेकिन संयोग से वो रिबन नहीं थी पैर में, किसी का पैर गिर गया था उसके ऊपर और रिबन टूट चुकी थी, पैर खाली था। और रामलाल समझ गया कि मैं खो गया, क्योंकि पत्नी ने क्या बोला था, तुम नहीं खोगे, रिबन बांध के तुमको भेज रही हूं। अब रामलाल वही बैठ गया, रोने लगा, मैं खो गया मैं खो गया मैं। लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं खो गया हूं। लोगों ने कहा तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारी पत्नी कहां? अरे बोले ये सब बेकार की बातें, मैं तो खो गया हूं। लोग समझ गए, लगता है कि कम दिमाग का है। घंटा बीता, दो घंटे बीते, दिन बीतने को हुआ। रामलाल की पत्नी परेशान हो गई और वो सोचने लगी, गया कहां गया, वो कहां गया, कहीं सचमुच खो तो नहीं गया। अब वो हिंदुस्तान की पत्नी नारायण, वो हिंदुस्तानी जो माताएं हैं ना, अपने पतियों से बहुत प्रेम करती हैं, सचमुच करती हैं। भले आपको बेवकूफ समझती हैं, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करती हैं। वो आपको नहीं छोड़ सकती, और वो बोल भी देती हैं, कैसा भी है, काला गोरा चिंगना, समझदार ना समझ, वो कैसे भी बेवकूफ हैं, लेकिन वो हमारा है, हम इस बेवकूफी को ढो लेंगे। अब वो निकल पड़ी नारायण, अब वो ढूंढने लगी, सबको पूछती सबको पूछती, वो बबलू के पापा कहाँ हैं, बबलू के पापा। आजकल के जमाने में तो माताएं आराम से नाम ले लेती हैं, और वो मालूम भी नहीं पड़ता कि जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कौन है तुम्हारा, नहीं मालूम पड़ते हैं, पड़ता है क्या। लेकिन पुराने जमाने में माताएं नाम नहीं लेती थी, और वो पुरुष लोग भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते थे, वो यूं बोल देते थे, डब्लू के पापा, ऐसा बोलती थी माताएं। और वो पुरुष भी नाम नहीं लेते थे, वो बोलते थे डब्लू की मम्मी, ऐसा बोल देते थे। और उसमें बड़ा रहस्य था, नाम लेने में रहस्य नहीं है, नहीं लेने में रहस्य था। अब वो सबको पूछती जा रही थी, डब्लू के पापा, डब्लू के पापा। लोगों ने कहा, हमने देखा तो है, चौराहे पर बैठ के वो रो रहा था। दौड़ते हुए गई, देखा, हाथ पकड़ा, बोले चलो घर चलो, क्या यहां क्यों बैठे हुए तुम, सब्जी उब्जी खरीदी नहीं, बोले क्या हुआ। उसने कहा, मैं खो गया हूं। पत्नी ने कहा कि तुम मेरे सामने हो, चलो तुम्हारी मैं पत्नी हूं, पहचानो। उन्होंने कहा, ये बात बेकार की है, मैं तो खो गया। पत्नी ने कहा, क्यों खो गए, तुम तो मेरे सामने हो। उन्होंने कहा कि मेरे पैर में रिबन कहां है। देखो दृष्टांत बहुत मजेदार है, हम भी जीवन में ऐसे ही कुछ कुछ जीते हैं। वो उसने दूसरी रिबन निकाली और पैर में बांध दिया। हाँ, जैसे ही पैर में बांधा, और रामलाल उछल पड़ा, उठ के खड़ा हो गया, और जो बहुत प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाने लगा, मैं मिल गया, मैं मिल गया, मैं मिल गया। हमारी भी दशा जो है ना, रामलाल से कम नहीं है, हम भी तो ऐसे ही खोए खोए हैं, और हमारे पैर में भी रिबन बंधी हुई है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम खोए नहीं है। हाँ, आप सत्संग में जब आ जाते हैं ना, तो महात्मा लोग आपके पैर में रिबन बांध देते हैं, भैया तुम नहीं खोए हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म तत्व हो, तुम्हारे अंदर जो अहम है ना, वो मैं हूं। ओहो हो, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, आनंद आया सब। लेकिन जैसे आप घर चले गए ना, अरे वहां तो भीड़ है, मेला है ना, झमेला है, और कोई ना कोई आपके रिबन के ऊपर पैर रख ही देता है, और आपकी रिबन टूट जाते हैं, और फिर खो जाते हो। आप घर में गए, और ये दुनिया की उलझने, इसमें फिर आप खो जाते हो, फिर खो जाते हो, और फिर रिबन बांधने के लिए फिर यहां सुबह 7:30 बजे आना पड़ता है। और ये श्रृंखला जो है वो नियत रूप से तब तक चलती रहेगी जब तक आप अपने आप को नहीं मिलोगे। ऐसे ही ये जो रिबन बांधना है ना, ये शास्त्र, सत्संग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये आपके रामलाल के पैर में रिबन बांधने की तरह। लेकिन रामलाल तो कभी खोया ही नहीं है। अच्छा, सचमुच खोया है क्या वो? और वो रिबन बांधने के बाद वो मिल भी जाता है तो क्या सचमुच मिलता है? अरे केवल उसके मन का भ्रम टूटता है। वो रिबन बांधना माने उसके मन का भ्रम तोड़ना है। ऐसे ही आत्मा तो हम हैं सदा सर्वदा, वो अपना रूप है, लेकिन अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण, भ्रम के कारण, आसक्तियों के कारण मालूम पड़ता है कि हम नहीं हैं, ये नहीं है। और उस समय आपको समझना है, और समझ का आधार ये आपका शरीर है। इसी शरीर का आश्रय लेकर आप समझो कि हम शरीर से अलग हैं। आप मन का आश्रय लेकर के समझो कि हम मन से अलग हैं। इंद्रियों का आश्रय लेके आप समझो इंद्रियों से अलग हैं, ये शरीर आपका साधन है और इसी शरीर को साधन बनाकर अपने को शरीर से परे हो जाना है। बोले कैसे? यथादर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। अरे बोले ऐसे ही है जैसे दर्पण में आप अपना मुख देख लेते हो ना। आप क्या करते हैं, दर्पण में आप अपना मुख देख लेते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? जो आप हैं वैसे दिखा देते हैं। आप काले हैं तो दर्पण में काले दिखाई देते हैं, आप गोरे हैं तो गोरे दिखाई देते हैं, आप जापानी बिटके नाक वाले हैं तो वैसे दिखाई देते हैं, और लंबा नाक हो वैसे दिखाई देते हैं। वो दर्पण जितना साफ होगा उतना ही आपको अच्छा दिखाई देगा, प्रतिबिंब उतना अच्छा दिखाई देगा जितना दर्पण साफ हो। तो आपकी सारी जो साधनाएं हैं वो आपके दर्पण, मन रूपी दर्पण, बुद्धि रूपी दर्पण को ठीक करने के लिए। और आपकी बुद्धि रूपी मन रूपी दर्पण जब स्वच्छ होगा यथादर्शे, और उसके बाद फिर उसी बुद्धि रूपी दर्पण में बहुत स्पष्ट रूप से आपको अपने आत्मा को देख लेना चाहिए, बुद्धि को ठीक करना चाहिए अपने। बोले स्वप्ने और पितृलोके नहीं, वह स्वप्न में आपको अपने आत्मा का आलोक, आत्मा का ज्ञान आपको नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न तो एक ब्रह्मभूत भ्रमित करने वाली चीज है। आप स्वप्न में, स्वप्न एक वासना है, स्वप्न एक भ्रांति है, जो नहीं है वो है, जहां नहीं है वहां है, जो समय नहीं है वो है। आप स्वप्न देख रहे हैं तो छोटे से समय में लंबा देख रहे हैं, जहां देश नहीं वो देश देख रहे हैं, जिस रूप में नहीं आप उस रूप में देख, ये तो भ्रांति है। आप स्वप्न में जो भी कुछ देख रहे हो ना वो भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि स्वप्न में जो आप नहीं है वही देख रहे हैं, आपने जो कभी किया नहीं वो देख रहे हैं, आप जहां नहीं है वहां खड़े मालूम पड़ रहे हैं, जिस समय नहीं वो समय मालूम पड़ रहा है। इसलिए आपका यथार्थ स्वरूप नहीं है, स्वप्न में भी आप अपने आप को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। बोले पितृलोके नहीं, वहां भी नहीं। आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आप लोक लोकांतर में खोए रहोगे, और आप सोचोगे कि मैं अपने आप को प्राप्त करूं, बोले ये भी संभव नहीं है। आदमी के मन में भोग भावना वो बाह्य वस्तुओं के आकर्षण में ले जाती है। आपके मन में इच्छा हुई कि 56 प्रकार का भोग खाऊं, ये हिंदू संस्कृति भी बड़ी मजेदार है। आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन यदि रख लेना तो आपका पेट ही न भरेगा। 56 चीजें खाने की आपके सामने रखे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये खाओ कि ये खाओ, ये खाओ, और सबसे निकालो थोड़ा थोड़ा, तो एक एक ग्रास निकालो तो 1 किलो हो जाए, आप खाओगे मजा आएगा आपको। लेकिन आपका जो मन है ना वो 56 में लगा रहता है, वो आप खाओगे तो नहीं लेकिन 56 सुनते ही आदमी दौड़ता हुआ जाता है, 56 प्रकार का बहुत खुश हो जाता है, देखता है कौन सी चीज है 56 प्रकार की, देख रहे हो खुश हो गया। और ये जो भोग भावना है वो आपको और आसक्तियों में ले जाती है, फिर आप सोचने लगते हैं ये ये ये, और आप बहिर्मुख हो जाते हैं। वासनाएं शरीर भाव जगा देती हैं, और ये शरीर जगता है तो फिर विषय की भावनाएं हमारे अंदर और पैदा होने लगती है। वासना पैदा हुई आपको मालूम पड़ा आंख है, वासना पैदा हुई मालूम पड़ा मुख है, वासना पैदा हुई मालूम पड़ा पैर है। आपके पास पैर है कब मालूम पड़ता है? जब चलने की वासना पैदा हो। यदि चलने की वासना न होना तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैर है। आपको घुटने का पता कब चलता है? हा? क्यों डॉक्टर? अरे जब चलना शुरू कर देते तब मालूम पड़ता है। और आप चलना कब शुरू करते हैं? जब चलने की इच्छा हो जाती है। आपको कब मालूम पड़ता है कि मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है? जब आप सुनना चाहते हैं। आपको कब मालूम पड़ता है कि आपके पास आंख कमजोर है? जब देखना चाहते हैं। तो नारायण जैसे वासना पैदा हो जाती है तो इंद्रिय मालूम पड़ती हैं, इंद्रियां जग जाती हैं, और इंद्रियां जग जाती तो विषय मालूम पड़ते हैं। विषय ये श्रृंखला है, इसलिए ये लोक लोकांतर, ये भोग विलासिता की चीजें उसमें आत्मा खो जाती है, आत्मविस्मृत हो जाती है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, उसमें अपना पता नहीं चलता, दुनिया का पता चलता है। यथापसु परिव अदृश्य, जैसे जल बहुत मटमैला है तो मटमैले जल में प्रतिबिंब आपको मालूम नहीं पड़ता है, आप देखना उसमें मटमैला है उसमें मालूम नहीं पड़ेगा, आपका प्रतिबिंब ही नहीं मालूम पड़ेगा। गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके, श्रुति ने कहा कि आप किसी भी लोक लोकांतर में जाओ, गंधर्व लोक, गंधर्व लोक माने अरे यही गंधर्व लोक माने जहां गाना नाचना आनंद प्रमोद बहुत सारी चीजें हैं। गंधर्व, गंधर्व बोलते ना ये गाता है, गंधर्व गाते हैं, गाते हैं, यहां गाना जो है ना उपलक्षण है, नाचना गाना खाना पीना मौज मस्ती आनंद, ये जो गंधर्व लोग हैं, बोले वहां भी नहीं है स्पष्टतर आत्मबोध, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां तो आपका मन तो भोग विलासिता में पड़ा रहेगा। वैराग्य बहुत जरूरी है, वैराग्य बहुत जरूरी है। आप यात्रा पथ पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई बहुत अच्छी चीज मालूम पड़ी, आप ट्रेन में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं और आप एक जगह पर प्लेन उतरने वाली थी, घंटा भर रुक के उसके बाद आगे जाने वाली थी, और वो एयरपोर्ट आपने बहुत सुंदर देखा, खाने पीने की चीजें भी फ्री, हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने रहने की व्यवस्था थी, आदमी ने सोचा कि चलो भाई अब यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए, आपने रास्ते को ही मंजिल समझ लिया, तो आप आगे की उड़ान भरोगे कि नहीं, नहीं भरेंगे। इसलिए हम अटक जाते हैं, हमारा ये जो शरीर है ना मिला है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, केवल जीव का प्रयोजन है तत्व को जानना, ये जीवन मिला है आत्म तत्व को समझने के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य तो आत्म तत्व है। लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये धर्म अर्थ काम और ये भोग विलासिता की चीजें जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य आत्म तत्व जानना, लेकिन लक्ष्य को हम भूल चुके और रास्ते को ही मान लिया कि ये मंजिल है, हम आंख में अटक गए, आंख में अटक गए, कान में अटक गए, रसना में अटक गए, इंद्रियों में अटक गए, भटक गए। छाया तपयोरी व ब्रह्मलोके, अरे बोले छाया और अतप धूप है, और ये छाया है, ये मिला हुआ रूप है ना, ये जिसको आप छाया छाया बोलते हो ना, वो छाया क्या है, उस छाया में प्रकाश भी है और अंधेरा भी है, ये छाया और अंधेरे का जो सम्मिलित रूप है ना, वही तो है छाया, उसमें अंधेरा भी है और उसमें थोड़ा प्रकाश भी है। अभी आप जहां बैठे हैं ना, आपकी छाया भी पड़ रही है नीचे, उस छाया में थोड़ा प्रकाश भी है, पूरा प्रकाश हो तो छाया नहीं दिखाई दे, और पूरा अंधेरा हो तो भी आपको छाया नहीं दिखाई दे, आप अंधेरे में बैठे हैं तो भी आपको अपनी छाया दिखाई नहीं पड़ती है, पूर्ण प्रकाश में बैठे हैं तो भी आपको छाया मालूम नहीं पड़ती है, छाया वहां मालूम पड़ती है जहां अंधेरा भी है और जहां थोड़ा प्रकाश भी है। तो बोले ब्रह्म लोग, ये लोक लोकांतर क्या है, अरे बोले ये तो छाया है, छाया माने उसमें अज्ञान है, वासना है, कामना है, सब कुछ है, केवल वहां उत्कृष्टता है, भोग की उत्कृष्टता है, और कई बार भोग की उत्कृष्टता आदमी के बंधन के प्रति कारण बन जाती है। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, ऐसा बोलते कि नहीं, भाई भजन करने के लिए आए थे लेकिन अब कपास ओठने लगे, क्योंकि कपास ओठने में आनंद का अनुभव होने लगा है। गए थे गंगा स्नान करने के लिए लेकिन आपने अपना समय कहीं होटल में गुजार दिया, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आए थे परमात्मा को पाने के लिए लेकिन भोग विलासिता में उलझ गए। कई बार बहुत ज्यादा दुनिया का सौंदर्य आदमी को अपने लक्ष्य से भटका देता है, अपने लक्ष्य से हटा देता है। आप माला लेके बैठ गए और उसी समय आपको भोजन की याद आ गई, किचन में छोंक लगा और उसी सुगंध आपके नाक तक पहुंची, और उस समय क्या होता है फिर अपनी माला? कई बार तो आदमी ये देखने के लिए जाता है कि क्या बन रहा है माला भी लेके जाता है, अरे इतनी सुगंध बोले क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, छूट गया ना, अरे वो सुगंध, उस सुगंध ने आपको भटका दिया, हटका दिया। इसलिए कहते हैं छाया तपयोरीव ब्रह्मलोके, बहुत ज्यादा लोग, लोकांतर, भोग, विलासिता, सौंदर्य, आकृति, ये इनमें फंसे न रहे, और ये शरीर छूटने के पहले ही आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम नारायण।